मेरे प्यारे छात्रों,
अब हम साहित्य वर्ग नामक हमारे इस पाठ्यक्रम में दूसरी इकाई के अंतर्गत हमारे नायक कवि विद्यापति के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में परिचय जानने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील कुमार लवटे, जैसे कि इसके पहले मैं आपसे संवाद करता आया हूं, इस व्याख्यान के दौरान मैं उनकी जीवनी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। कवि विद्यापति का जन्म 1375 में बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में हुआ। आप जानते हैं कि आज हमारा बिहार राज्य भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में लोग उसको पिछड़ा कहा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य उस समय भी और आज भी, जहां तक हमारी साहित्य संस्कृति और बुद्धिमानी का सवाल है, वह हमारे देश की एक ज्ञानपीठ के रूप में, ज्ञान केंद्र के रूप में तब से परिचित है। एक छोटा उदाहरण मैं उसका देना चाहूंगा कि बिहार में बुद्धिमानी की परंपरा बहुत पुरानी है। विद्यापति की जिंदगी में भी हम देखा करते हैं कि परंपरा से उनके घर में पांडित्य की परंपरा चलती रही, पठन पाठन का संस्कार चलता रहा और ऐसे वातावरण में कवि विद्यापति का जन्म होना, उनका बचपन गुजारना अपने आप पठन पाठन के संस्कार विद्यापति पर हुए। उनके जो पिताजी थे, जिनका नाम गणपति ठाकुर था, वे भी शास्त्र पंडित माने जाते थे। वे राजदरबार से संबंधित थे, उनको राजदरबार का ओहदा था। मिथिला के जो राजा थे उस समय के, गणेश्वर सिंह, उनके दरबार में गणपति ठाकुर जी का नित्य आना जाना रहा करता था। उस समय ऐसी परंपरा थी कि हमारी शिक्षा दीक्षा अनौपचारिक रूप से रहा करती थी, यानी पढ़ने पढ़ाने के लिए लोग किसी स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते थे। गुरुजी के यहां जाने का रिवाज था और सबसे सशक्त शिक्षा घर परिवार में हुआ करती थी। ऐसे परिवार में बालक विद्यापति जब दरबार जाने लगे तो दरबार की जो तहजीब थी वो अपने आप और अनौपचारिक ढंग से विद्यापति सीखते गए। शिक्षा का एक बहुत बड़ा सूत्र बताया जाता है, सीइंग इज बिलीविंग। उसका गहरा असर आखनदेखी से विद्यापति के जीवन पर पड़ा। बचपन से ही तेज तर्रार बुद्धि हासिल करने वाले विद्यापति अपने गुरुजी के कलेजे के ताईद बने। असाधारण प्रतिभा के साथ असाधारण स्मरण शक्ति का होना विद्यापति के व्यक्तित्व का अंग था। वह ऐसा समय था दोस्तों, 13वीं-14वीं सदी का, कि स्मरण ही मनुष्य की शक्ति थी। लिखाई तो खैर लोग जानते थे, लेकिन पठन पाठन जिसका अच्छा वो पंडित माना जाता था। तो इस कसौटी पर हम देखते हैं कि अल्प समय में ही विद्यापति ने संस्कृत में अपना अधिकार जमाया। 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है वो भाषाई दृष्टि से संस्कृत प्रभाव का कालखंड था, क्योंकि हमारी जो सारी भाषाएं थी उस समय की, उसकी बुनियाद संस्कृत थी। परवर्ती काल में अपभ्रंश, प्राकृत, अर्धमागधी आदि भाषाओं ने अपनी अपनी जड़ें जमाई। फिर भी जैसे कि हमारा नायक कवि विद्यापति, वो बांग्ला भाषा में प्रवीण था, मैथिली में प्रवीण था, अवहट उसको आती थी, अवधि वह जानता था, फिर भी सब भाषाओं की जो जड़ थी वह संस्कृत होने के कारण, उस पर अधिकार होने के कारण, जो पारंपरिक काव्य ग्रंथ थे उन काव्य ग्रंथों का और पारंपरिक श्रवण साहित्य का ऐकीव का, जिसको मराठी में हम कहा करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने पास होने वाली साहित्य संस्कृति ज्ञान की परंपरा मुखोद्गत कंठस्थ पद्धति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते थे। शिक्षा भी लगभग ऐसी थी कि गुरुजी अपनी पढ़ी पढ़ाई बातें अपने छात्रों को मुखोद्गत कराता था। उसमें उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व रहा करता था, शब्दार्थों का बड़ा महत्व रहा करता था। गुरुजी जो संथा देते थे पढ़ाने की, जो प्रक्रिया थी गुरुजी की उस समय की, शुद्धता पर बहुत बड़ा बल रहा करता था। व्याकरण सम्मत भाषा शिक्षा उस समय पंडितों की शिक्षा विधि थी। हमारा नायक कवि विद्यापति संस्कृत में रुचि लेता रहा, और यही कारण है कि उस समय संस्कृत में उपलब्ध जितने भी सारे ग्रंथ थे उनका पठन पाठन करने के कारण एक विस्तृत ज्ञान क्षितिज को लेकर वे जब बड़े बने, उन्होंने होश संभाला, वो वयस्क बने, युवा बने, तो उनकी जो पहली रचना है कीर्तिलता, वो जानते हो उम्र के सिर्फ 20वें वर्ष उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य की पहली रचना कीर्तिलता लिखी। ये कीर्तिलखा लता नाम का जो उनका काव्य ग्रंथ है, विद्यापति के पिताजी जिस गणेश्वर सिंह के दरबार के दरबारी थे, उन्हीं का बेटा था राजकुमार कीर्ति सिंह। विद्यापति उस कीर्ति सिंह के हम उम्र के थे, आत्मीयता थी, अंतरंग मित्र थे राजकुमार कीर्ति सिंह के, तो उनकी प्रशंसा में ये लिखा गया पहला ग्रंथ था कीर्तिलता। कीर्तिलता में खुद विद्यापति ने अपना उल्लेख खेलन कवि के रूप में किया है। ये खेलन कवि शब्द मैं आपको हमारा प्रचलित शब्द याद करना चाहूंगा कि हम कभी अपने आत्मीय मित्र के साथ उसका परिचय देते हैं तो समझाते हैं कि ये मेरा लंगोटियार है। ये लंगोटियार होना जो है ना, इसका मतलब यह है कि जब मैं लंगोटी पहनता था तब से ये मेरा मित्र है। खेलन कवि का संदर्भ भी वही है कि हम जब बचपन में मिलकर खेला करते थे, दोस्ताना ताल्लुकात बचपन से ही हमारा था, तो यह जो हमारा चरित्र नायक है कीर्तिलता का, इस कीर्तिलता के चरित्र नायक कीर्ति सिंह के ये खेलन कवि थे राजकुमार के समवयस्क होने की बात विद्यापति ने कीर्तिलता में कही थी। बताया जाता है कि विद्यापति को लंबी उम्र मिली थी। कुछ समीक्षक ये बताते हैं कि उनकी उम्र 103 वर्ष की थी, कुछ समीक्षक 73, कुछ 75 बताते हैं। जहां तक मेरा आकलन है दोस्तों, ये लगभग 70-75 की उम्र की लंबी आयु उन्हें मिली थी, जो संकेत उनके साहित्य से मिलते हैं उसके आधार पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्योंकि इतनी लंबी उम्र का रुझान उस समय नहीं था, शतक पूर्ति शायद होती थी, उसको लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां 13वीं-14वीं शताब्दी में दो चार शब्दों को मैं आपको समझाना चाहूंगा। चालीसी नाम का शब्द वर्तमान में हम ऐनक को लेकर, चश्मे को लेकर बताते हैं। एक जमाना था 20वीं शताब्दी में कि लोगों की लंबी उम्र बुढ़ापे में तब्दील हो जाती थी, वो 40 की उम्र में षष्ठी समझाते हम, षष्ठी मनाते हैं, षष्ठाब्दी पूर्ति समारोह होता है, वो मनुष्य के पूरे तौर पर बूढ़े बनने का संकेत है। शायद ही लोग उन दिनों षष्ठी पूर्ति करते थे, इसलिए समारोह होता था, लोगों को आश्चर्य लगता था लंबी उम्र। अमृतोत्सव तो अपवाद की बात थी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि उस समय हमारी लॉन्गिविटी थी, हमारी जीने की जो औसत उम्र थी वह लगभग 40 से 60 रहा करती थी। उस समय विद्यापति को लंबी उम्र भी मिलती और उसको हम ग्रहित मानते तो भी वह 70-75 के करीब ही स्वीकार्य समय के संदर्भ में की जा सकती है। इस लंबी उम्र का एक लाभ विद्यापति को उस समय हो गया था, वो यह था कि उस समय के राजा विद्यापति के समय के अल्पायु रहे, और यही कारण है कि 5 राजाओं के दरबारों का राजकवि बनने का सौभाग्य विद्यापति को मिला। गणेश्वर सिंह के बाद कीर्ति सिंह आए, उसके बाद भव सिंह, देव सिंह, शिव सिंह राजा बने। इत्तफाक से इन सभी राजाओं के दरबार का राजकवि होने का सौभाग्य विद्यापति को मिला। विद्यापति की इतिहास में जो शोहरत है वह शोहरत इस कारण नहीं है कि वह राजदरबारी थे, इस कारण भी है कि एक लंबा समय उन्होंने राजनीति का देखा था और उसके कमोबेश असर उनके व्यक्तित्व पर हो गए थे और इनकी कीर्ति दिगंत में फैली थी। इसका कारण भी उनका राजकाज से गहरा और दीर्घ संबंध था। उस समय के जो कवि थे उन कवियों की प्रामाणिकता का परिचय ग्रंथों में वे अपने आश्रित राजाओं का जो बखान करते थे उसके आधार पर समझी जाने की एक पद्धति साहित्य इतिहास में है। इस आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पदावली में, विद्यापति की जो पदावली है उसमें समय समय पर, जगह जगह पर विद्यापति ने अपने आश्रित राजा गणेश्वर सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, विद्यापति ने कुछ पद अपने आश्रित राजा रानी को संबोधित करके भी लिखे हैं। संबोधित करके पद लिखने की जो परंपरा है वो बड़ी प्रामाणिक समझी जाती है और उससे कवि के द्वारा वह विशिष्ट रचना पद लिखने की बात भी उससे समय के संदर्भ में सिद्ध होती है। विद्यापति गृहस्थ आदमी थे, शादीशुदा थे, घर बसाया था उन्होंने, उनके 4 संतानें थी। उसमें वाचस्पति हरपति नरपति जैसी संतानों ने नाम कमाया और विशेषकर उनके पुत्र नरपति थे वे पंडित बाद में बने हुए इतिहास में दिखाई देते हैं। एक तरह से विद्यापति के वंश में लगातार तीसरी पीढ़ी में पांडित्य की परंपरा का होना भी उस समय की समृद्धि को सिद्ध करने वाली बात है। नरपति के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ दैवज्ञ बोध एक ज्ञाति विशेष का आज भी आदि ग्रंथ माना जाता है। वैष्णव विद्यापति शैव भक्त थे, भले उन्होंने कृष्ण काव्य लिखा, लेकिन जहां तक विद्यापति के दार्शनिक चिंतन पर व्यक्तित्व का विश्लेषण हम करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये शिव के आराधक थे और जो एक दैवत ज्ञाति थी उस ज्ञाति का एक सामाजिक अध्ययन विद्यापति के पुत्र नरपति ने किया था और उसके दर्शन हमें दैवज्ञ बोध में मिलते हैं। विद्यापति के बहुभाषी होने की बात मैंने इसके पूर्व आपको बताई है, इसके पूर्व व्याख्यान में। यहां मैं समझाना चाहूंगा कि कवि विद्यापति अनेक भाषाओं के आद्य कवि थे और उनकी लिखी पांडुलिपियां, उनकी हस्ताक्षरित प्रतियां बहुत इस समय के कम लोगों की हस्ताक्षर की प्रतियां जो उपलब्ध है उसमें विद्यापति का लिखा श्रीमद् भागवत आज भी आपको दरभंगा राजा के राज पुस्तकालय में मिलता है। ये जो विद्यापति के हस्ताक्षर से लिखी श्रीमद् भागवत की जो कॉपी थी वह दरभंगा के तरौनी गांव के एक सज्जन थे लोकनाथ झा, उनके परिवार में ये मिली थी। बाद में साहित्य और संस्कृति के संरक्षक दरभंगा के महाराजा ने उसे खरीदकर अपने पुस्तकालय में उसको आज भी सुरक्षित रखा है। जब भी कोई अनुसंधाता विद्यापति की पदावली का अनुसंधान करता है तो उसके लिए वह कॉपी आज भी उपलब्ध है। यह भी बात मेरे प्यारे छात्रों अधोरेखित करने की है कि विद्यापति के अंतःसाक्ष कितने प्रमाण हमें बिहार में आज मिलते हैं उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि राजा शिवसिंह द्वारा विद्यापति के सम्मान में एक ताम्रपत्र प्रदान किया था। तांबे की सम्मानित पट्टी उन्हें बहाल की गई थी। आज भी वह वहां के एक पिंडारुद्ध नाम का गांव है दरभंगा जिले में, वहां के जो निवासी है रविकांत चौधरी उनके घर वंश से आज भी वह सुरक्षित मिलती है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी कवि की प्रामाणिकता इस आधार पर तय होती है दोस्तों कि उसकी लिखी रचनाएं हमारे पास है या नहीं, उसके अंतःसाक्ष साधन हमारे साथ है या नहीं। ये सारी बातें उस व्यक्ति के इतिहास में होने की गवाह मानी जाती है। इस आधार पर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि जिससे विद्यापति के होने की बात सिद्ध होती है वह यह है कि उन दिनों मनुष्य की मृत्यु के बाद चिता जल जाने के बाद कहीं कहीं समाधि की परंपरा है, यानी जहां मनुष्य का दहन होता था, भले वह हिंदू धर्म का हो, तो वहां समाधि बांधने की भी परंपरा कहीं कहीं दिखाई देती है। आज भी आपको बिहार में वाजिदपुर नाम का जो रेलवे स्टेशन है, वहां एक शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर पहले समाधि स्थल था, बाद में वो मंदिर बना। वहां के सबूत ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि वो समाधि और कुछ न होकर विद्यापति का चिता स्थल था, बाद में उसका मंदिर बनाया गया। इन सब सबूतों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ये महाकवि बिहार में पैदा हुआ, पला बढ़ा और उसने उस इलाके का नाम सारी दुनिया में रोशन किया अपनी असाधारण बुद्धि के आधार पर। उनकी इस असाधारण बुद्धि का जो परिचय है वो उनके व्यक्तित्व से भी दोस्तों होता है। लोग ऐसा बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व विविध मुखी था, बहुमुखी था। वे जैसे कवि थे वैसे विभिन्न ज्ञान विज्ञानों के ज्ञाता थे, कलाकार थे वे। उनके कलाकार होने की बात जब आप हमारे पाठ्य पुस्तक पदावली को पढ़ेंगे तो भाषा पर एक व्यक्ति का अधिकार कितने क्षेत्रों पर होता है उसका पता पदावली की हर पंक्ति हमें देती रहती है कि प्रकृति का असाधारण अध्ययन विद्यापति का था। मनुष्य की देह की सुंदरता का जो निरीक्षण और शब्दबद्ध करने की जो क्षमता विद्यापति में थी वो सचमुच असाधारण थी। बात नारी सौंदर्य की हो या पुरुष सौंदर्य की, बात प्रकृति सौंदर्य की हो या ऋतु सौंदर्य की, जो वर्णन विद्यापति अपनी कविता के जरिए, अपनी शब्द संपदा के जरिए करते हैं, उसमें दोस्तों संगीत, नाद, ताल, अनुप्रास ऐसी समा बन जाती है कि बिना शब्दार्थ को जाने आदमी पदावली पढ़ता जाता है। ये पदावली का निरंतर पढ़ता जाना मनुष्य का वो किस चीज को समझाता है, ऐसा यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो एक मनस्विता है उनके कविता में होने वाली, उससे उनके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। वो बड़े भावुक थे, संवेदनशीलता के कारण ही मनुष्य की भावभंगिमाओं का जितना सूक्ष्म चित्रण पदावली में हमें मिलता है उतना शायद ही आपको किसी कवि में मिलेगा। वे भूतकाल पर माने विगत पर जितना अधिकार उनका था उतनी ही सोच उनकी अनागत के बारे में थी। माने भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का जो एक विस्तार उनकी प्रतिभा में था और यही कारण है कि आगत पर माने वर्तमान पर उनकी गहरी श्रद्धा उनकी कविता में दिखाई देती है। उनके समग्र काव्य जीवन और व्यक्तित्व को देखकर विद्वानों में इस बात पर असमंजस की स्थिति दिखाई देती है कि क्या विद्यापति शिव भक्त थे या कृष्ण भक्त थे। लेकिन मैं आपको दावे से तो नहीं लेकिन छोटे आकलन के आधार पर समझाना चाहूंगा कि भले वे शिव भक्त थे, कृष्ण की जो चर्चा उनकी कविता में दिखाई देती है वो आराध्य के रूप में कतई नहीं है। वो सारी चर्चा एक लौकिक सीमा तक ही आपको दिखाई देती है। राधा कृष्ण उनके आराध्य नहीं थे, वो उनके साहित्य के लक्ष्य जरूर थे। और जहां तक मैं बताता हूं कि देह और भौतिक सीमा तक ही कृष्ण और राधा की चर्चा उनकी पदावली में दिखाई देती, इसके आधार पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह कृष्ण वर्णन करने वाले कवि जरूर थे लेकिन कृष्ण भक्त कभी नहीं थे। इसलिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें जो कृष्ण भक्ति शाखा है, उस कृष्ण भक्त शाखा के आदि कवि के रूप में भले विद्यापति का जिक्र हम करते हैं लेकिन फिर भी उनको कृष्ण वर्णन का आदि कवि माना जाता है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि के रूप में इतिहासकार कभी विद्यापति को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण भक्ति की अपेक्षा उनकी कविता में श्रृंगार और नीति की चर्चा ज्यादा है, भौतिक की चर्चा ज्यादा है। अलौकिकता या आध्यात्मिकता की कमी या दर्शन की कमी आपको जो दिखाई देती है वह भी उनको भक्त परंपरा से अलग करती है। एक दूसरा दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा कि विद्यापति पर जो गहरा असर उनकी काव्य भाषा, उनकी काव्य प्रतिभा, उनकी काव्य शैली, इन पर जो एक प्रभाव मुझे दिखाई देता है वह कवि जयदेव का है। कवि जयदेव ने गीत गोविंद लिखकर जो शोहरत कमाई, जो परंपरा विकसित की, उस परंपरा की श्रीवृद्धि करने का काम विद्यापति की पदावली करती है। क्योंकि जयदेव जैसा ही सशक्त श्रृंगार हमें विद्यापति की पदावली में दिखाई देता है। विद्यापति के बहुभाषी होने की बात मैंने बताई, मैं इस बात को भी लगे हाथ आपको समझाना चाहूंगा कि विद्यापति ने जो सारी 14-15 रचनाएं उनकी आज हमारे हाथ है वह विभिन्न भाषाओं में आपको दिखाई देती है। संस्कृत में उन्होंने ज्यादातर रचनाएं की, फिर इन्हीं गिनी रचनाएं उनकी अपभ्रंश और मैथिली में लिखी नजर आती है। संस्कृत में उन्होंने लगभग दर्जन भर रचनाएं की, उसमें पहली जो रचना है शैव सर्वस सार नाम की, वो शैव मत की एक महान कृति मानी जाती है। हमारे यहां जो वैष्णव भक्ति है या जिसको हम हिंदू भक्ति पद्धति कहा करते हैं उसमें शैव और शाक्त की जो दो धारा हैं उसमें भगवान शिव को यानी शंकर को आराध्य मानकर जो एक विचारधारा विकसित हुई थी उसके वे उस संप्रदाय के वे अनुगामी थे जिसकी चर्चा इस शैव सर्वस्व सार में दिखाई देती है। मैंने आपको बताया कि ये जिस पंडित परंपरा से हमारे महाकवि विद्यापति आते हैं उनके यहां शास्त्र का गहरा अध्ययन था, तो पुराण एक हमारा ऐसा आदि ग्रंथ है कि जो ग्रंथ हमारी तमाम रूपकों मिथकों की जननी मानी जाती है। तो पुराण में जितने मिथक है उन मिथकों को आधार बनाकर एक ग्रंथ विद्यापति ने लिखा जो पुराण संग्रह नाम से परिचित है। उस समय के जो कवि थे और विशेषकर जो राज दरबारी कवि थे वे राजा के साथ दिग्विजय जाते थे, कभी आखेट के लिए, कभी युद्ध के लिए, कभी राजा की केली क्रीड़ाओं के लिए उनका भटकना होता था। हिंदी साहित्य में पर्यावरण को लेकर, यात्रा को लेकर जो आदि ग्रंथ माने गए हैं उसमें विद्यापति की भू परिक्रमा, आज जिसको विश्व परिक्रमा कहा जाता है, ऐसे दर्शन भू परिक्रमा नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। विद्यापति का लिखा और एक अनूठा संस्कृत ग्रंथ है, वह है पुरुष परीक्षा। वधु परीक्षा शब्द अक्सर हम सुनते आए हैं, लेकिन पुरुष परीक्षा शब्द शायद आपने सुना होगा। विद्यापति की यह विशेषता थी कि वह नई नई ज्ञान शाखाओं, नई नई ऐसे विषयों पर रचना करते थे कि जिससे ज्ञान विस्तार का श्रेय अनेक क्षेत्रों में, जैसे मैंने अभी यात्रा वृत्त की बात बताई भू परिक्रमा की, वैसे पुरुषों पर लिखे जाने की परंपरा साहित्य में शायद दिखाई देती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि कृष्ण भक्त जितने सारे कवि हैं उन्होंने कृष्ण के बारे में भी लिखा है और राधा के बारे में भी लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने पन्ने राधा पर खर्च हुए हैं उसके अनुपात में आपको कृष्ण पर कम पन्ने खर्च किए दिखाई देंगे। ये जो हमारा पाठ्य ग्रंथ है पदावली, इस पदावली में भी आप देखा करेंगे, पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य में आप देखा करेंगे कि पृथ्वीराज केंद्र होकर भी संयोगिता पर कितने विस्तार से लिखा गया। पदावली में आपको वयसंधि, मिलन, दूती संवाद, नखशिक वर्णन, बारहमासा, सबका केंद्र आपको राधा दिखाई देती है, कृष्ण नहीं। तो यह जो पार्श्वभूमि हमारे लेखन की, उसके परिपार्श्व में पुरुष परीक्षा एक अनूठा ग्रंथ है। आदिकाल में अमीर खुसरो ने एक लेखन की परंपरा विकसित की जिसको रंजनवादी लेखन परंपरा कहा करते हैं, कि जिसमें कवि अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर शब्दों की नई नई भंगिमाएं हमें बताता जाता है। अखरावट जैसा जो ग्रंथ है वह एक एक अक्षरों को लेकर लिखे हुए पद आपको दिखाई देते हैं। वैसे तीन ग्रंथ विद्यापति ने लिखे, एक है लेखनावली जिसको आज की तुलना में हम कहा करेंगे कि हमारे सदाचार के जितने संदर्भ है उनको जुटाने का काम लेखनावली में किया गया है। मुझे एक घटना याद आती है कि हमारे प्राचीन इतिहास में एक ग्रंथ लिखा गया था विश्व गुणादर्श चंपू। वो जो लिखने वाले कवि पंडित थे उनका उद्देश्य था कि दुनिया के जितने सारे गुण हैं उन सारे गुणों का मैं ऐसा संग्रह करूंगा कि दुनिया में दोष नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, यानी मेरा ग्रंथ जब प्रकाशित होगा तो लोगों पर सद्गुणों का इतना असर हो जाएगा कि लोगों के सारे दोष दूर हो जाएंगे। इतने महान उद्देश्य से लिखे गए दुनिया भर के सद्गुणों के उस संग्रह के प्रकाशन के बाद हश्र क्या हुआ दोस्तों? हश्र ऐसा हुआ कि वह ग्रंथ पढ़ने के बाद लोगों में ये बताने की होड़ लगी कि इसमें फलाना फलाना गुण नहीं है, माने होने वाले गुणों की चर्चा करने की अपेक्षा लोगों ने अनुपस्थित गुणों की चर्चा ज्यादा की। इसको लेकर विनोबा ने एक मनुष्य वृत्ति की चर्चा उस ग्रंथ के बहाने की। विनोबा ने बताया है कि मनुष्य, आप मुझे पूछेंगे कि कैसा भक्त होता है, तो कृष्ण का श्लेष करके उन्होंने बताया कि मनुष्य कृष्ण भक्त होता है, कि जीवन का जो काला पक्ष है उस पर मनुष्य का ज्यादा ध्यान जाता है, तभी तो मनुष्य को विनोबा ने जो कृष्ण भक्त कहा था उस अर्थ में श्लेष में। वो लेखनावली कोटेशंस सदाचार के जितने सुंदर वाक्यांश उस समय में थे उनका संग्रह विद्यापति ने अपनी काव्य ग्रंथों में किया है। गंगा वाक्यावली उसका प्रतीक है, दान वाक्यावली उसका प्रतीक है, ऐसे अनेक संग्रह जिसको मैं तो ये कहूंगा कि कोश लिखने की जो परंपरा है वो कोश लिखने की परंपरा भी एक तरह से शुरू करने का श्रेय प्राचीन काल का ये कवि विद्यापति को देना चाहिए। ये तीन ग्रंथ उसके प्रमाण है। फिर है उनका एक और संस्कृत ग्रंथ विभागसार, फिर आता है गयापत्तलक, फिर आता है वर्षकृत। ये वर्षकृत्य नाम का जो ग्रंथ है कि उस समय हमारे जितने कर्मकांड थे, रिचुअल थे, उन सारे रिचुअलों की चर्चा विद्यापति करता नजर आता है। एक अपवाद ग्रंथ संस्कृत में विद्यापति का पाया जाता है जिसका शीर्षक है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, कि वह शिवभक्त होकर भी दुर्गा के भक्ति का ग्रंथ लिखता है, इसका कारण क्या है? ऐसा प्रश्न शायद आपकी जहन में उतर आएगा, निर्माण होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका श्रेय जिस समाज वर्ग में, जिस परिवेश में विद्यापति रहा करते थे, वो परिवेश बिहार बांग्ला है। बिहार बांग्ला में संचार विद्यापति का हुआ करता था, इतिहास से हम जानेंगे। दुर्गा पूजा की पूर्वापार परंपरा बांग्ला में दिखाई देती है। आज हम महाराष्ट्र में भी दुर्गा पूजा करते हैं। ये जो दुर्गा पूजा का रिवाज उस परिवेश में था, उसका प्रभाव इस कवि पर होना स्वाभाविक था, जो इस ग्रंथ से हमें उसका परिचय मिलता है। फिर उन्होंने संस्कृत के साथ अपभ्रंश भाषा में भी दो रचनाएं की है, विशेषकर कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों ग्रंथ कवि ने अपने आत्मीय मित्र राजा शिव पर लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रंथ वो अपने आप में अपवाद ग्रंथ है। उसमें एक है पदावली, जिसकी चर्चा मैं बाद में विस्तार से करने ही वाला हूं। गोरक्ष विजय नाम का एक काव्यात्मक नाटक मैथिली में विद्यापति ने लिखा था। ये जो दो मैथिली रचना है इनको लेकर विवाद भी चलता है कि क्या इसकी भाषा मूल बांग्ला है या मैथिली है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों भाषा हैं, क्या मैथिली और क्या बांग्ला। हमारे संविधान ने भी दोनों भाषाओं को आज अलग अलग भाषाओं का, स्वतंत्र भाषाओं का ओहदा दिया है। इसका कारण यह है कि अपने आप में इन भाषाओं की परंपरा, उनका व्याकरण, उनकी लेखन पद्धति, उनके वर्ण, उनके शब्द समुदाय अलग अलग होने की बात सिद्ध होती है। मैथिली और बांग्ला में अपभ्रंश और मैथिली दोनों के शब्द एक दूसरे में घुलमिल गए हैं। और इसका सुंदर प्रमाण आपको विद्यापति की इन रचनाओं में दिखाई देता है। विद्यापति एक महाकवि जो बने वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने पदावली की रचना की, विद्यापति को महाकवि इसलिए भी समझा जाता है कि अनेकानेक भाषाओं में उन्होंने बुनियादी लेखन किया और इसलिए इन भाषाओं के जनक कवि होने का श्रेय हम विद्यापति को देते हैं। हमारा जो लक्ष्य ग्रंथ है पदावली, इस पदावली को लेकर मैं स्वतंत्र व्याख्यान में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि अपने आप में वो हमारी पाठ्य पुस्तक जैसी है। वैसे विद्यापति के काव्य सौंदर्य का यदि आपको प्रमाण देखना है, भाषिक ताकत देखनी है, अनुप्रासिक शक्ति देखनी है, तो पदावली को छोड़कर और कोई ग्रंथ मेरी समझ में नहीं आता। वैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों ग्रंथ भी उसके पास जाने वाले होकर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उसकी भाषा अलग है, लेकिन जहां तक हिंदी के आदि रूपों की जड़ें हम जिस ग्रंथ में देखते हैं वह ग्रंथ है पदावली, जिसकी विस्तार से चर्चा हम स्वतंत्र व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।